हरे कृष्ण। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन, जय ब्रज जनरंजन, जय यशोदानंदन, जय ब्रज जनरंजन, जय यमुना तीरा वनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, జయ యశోదానందన జయ వ్రజ జనరంజన జయ యశోదానందన జయ వ్రజ జనరంజన జయ యమునా తీరవనచారి జయ కుంజ బిహారి జయ యమునా తీరవనచారి జయ కుంజ బిహారి మాధవ జయ కుంజ బిహారి జయ రాధా మాధవ జయ కుంజ బిహారి హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ 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 హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मयी की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरद्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। पिछले रविवार को हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अध्याय संख्या 89 से एक लीला का वर्णन कर रहे थे, जिससे ये साबित हुआ कि ब्रह्मा शिव और विष्णु में से विष्णु भगवान परम हैं। देवलोक में ये चर्चा चल रही थी और कोई निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पाए, तो भृगु मुनि को उन्होंने भेजा तीनों की परीक्षा करने के लिए। और उस परीक्षा के दौरान क्या हुआ, भृगु मुनि ने क्या किया और ब्रह्मा जी शिव जी और विष्णु जी का क्या व्यवहार रहा उस समय, उसका भी वर्णन हुआ। और इसी अध्याय में शुकदेव गोस्वामी एक और लीला का वर्णन करते हैं। ये लीला वैसे तो क्रम से नहीं आती है, क्योंकि श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अंत में ये लीला का वर्णन हो रहा है, जबकि श्री कृष्ण का द्वारका लीलाएं प्राय समाप्त हो चुकी थीं। तो आचार्यों ने बताया है कि ये लीला वास्तव में कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहली हुई थी, लेकिन अब जब सारांश में भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान हो रहा है तो इस लीला का वर्णन भी सुखदेव गोस्वामी करते हैं। यदि पहले हुए लीला में ये वर्णन है हुआ कि भगवान विष्णु परम हैं, तो इस लीला से जिसका वर्णन अब हम करने वाले हैं इससे ये साबित होता है कि भगवान विष्णु से भी श्रेष्ठ हैं श्री कृष्ण। और दैव से आज भागवत क्लास में सुबह भी इसी तरह का विषय था। तो हुआ ये कि एक बार द्वारका में जहां श्री कृष्ण भी रहा करते थे और वहां राजा उग्रसेन महाराज थे, तो एक ब्राह्मण वहां रहा करते थे अपने पत्नी के साथ। उनके पत्नी वो भी ब्राह्मणी थी, बहुत पावन दोनों थे, बहुत ही पुण्यवान। दोनों को एक दिन एक बच्चा हुआ, लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ और उसने भूमि से स्पर्श किया वैसे ही उसका देहांत हो गया। तो ये ब्राह्मण बहुत विचलित हो गए, स्वाभाविक है, नवजात शिशु की मृत्यु होने पर माता पिता तो विचलित होंगे ही। लेकिन विचलित होने का कारण केवल ये नहीं था कि उनके बच्चे की मृत्यु हुई है, विचलित होने का कारण ये भी था कि ये जो घटना हुई है ये राजा के गलत कार्यों के कारण हुई है। अपने राजा उग्रसेन के दरबार में गए और बहुत ही जोर जोर से अपशब्द कहने लगे राजा उग्रसेन से। वैसे राजा उग्रसेन तो बहुत धर्मपरायण राजा थे, उनमें कोई दोष नहीं था, परंतु ये ब्राह्मण ने अपने दोष नहीं देखे कि मेरे भी ऐसे कोई कर्म हुए होंगे जिसके कारण मेरे सामने मेरा छोटा सा बच्चा मर गया। क्योंकि कर्म के कानूनों के अनुसार जो बूढ़े होते हैं उनकी मृत्यु पहले होती है साधारणतः। यदि हमारे जीते जी हमारे बच्चों की मृत्यु होती है तो ये कोई पूर्व जन्मों के कोई बुरे कर्मों का फल है। साधारणतः जो बुजुर्ग हैं वो उनका देहांत पहले होता है। तो ब्राह्मण ने ऐसा नहीं सोचा कि इसमें मेरे कोई निजी कर्मों का भी मामला है। उन्होंने यही सोचा कि मैं तो एक पुण्यवान ब्राह्मण हूँ, निष्पाप हूँ, तो अवश्य दोष राजा का ही होगा। तो देखिए वैदिक काल में राजा की जिम्मेदारी कितनी बड़ी हुआ करती थी। यहां तक कि समाज में या राज्य में जितना सुख दुख है वो सब राजा के ऊपर निर्भर हुआ करता था। ज्यादा बारिश कम बारिश, ज्यादा गर्मी कम गर्मी, ज्यादा ठंडी, जो भी कोई प्राकृतिक आपत्तियां यदि आती थीं, तो वो भी उनके लिए भी जिम्मेदार राजा ठहराए करते थे। यदि राजा पुण्यवान होता था तो ऐसे माना जाता था कि प्रजा भी ठीक रहेगी, क्योंकि राजा जैसे धर्म का पालन करेगा वैसे वैसे प्रजा भी पालन करेगी। और सभी लोग जब धार्मिक रहेंगे तो प्रकृति के नियम भी सब ठीक ठाक चलेंगे। तो महाराज उग्रसेन के दरबार में आए और बहुत जोर जोर से भर्त्सना करने लगे महाराज उग्रसेन की कि ये ब्रह्मद्विष है। ब्रह्मद्विष मतलब जो वेदों से, ब्राह्मणों से, वैदिक सभ्यता से द्वेष करता है, और इसके कर्म दोष के कारण, इस राजा के कर्म दोष के कारण मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई है। और ऐसे बहुत कुछ ये ब्राह्मण बोलने लगे अपने क्रोध में, भला बुरा बहुत कह दिया राजा उग्रसेन को। अब राजा उग्रसेन ने कुछ कहा नहीं, वहां सभा में सभी उपस्थित थे, श्री कृष्ण थे, बलराम थे, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न सब उपस्थित थे, बड़े बड़े योद्धा। किसी ने कुछ कहा नहीं। राजा उग्रसेन को क्षत्र बंधु कह के पुकारा उस ब्राह्मण ने। क्षत्र बंधु अर्थात जिसने क्षत्रिय के कुल में जन्म लिया है परंतु जो वास्तव में क्षत्रिय नहीं है। जैसे कि यदि कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है परंतु उसके ब्राह्मण के गुण नहीं है उसके अंदर, तो वो ब्रह्म बंधु कहलाता है। ब्रह्म बंधु अर्थात सच्चा ब्राह्मण नहीं है, केवल नाम के लिए ब्राह्मण है। उसी प्रकार से क्षत्र बंधु, इसका कहने का मतलब यह है कि कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य आदि है, तो ही इसका निर्धारण कैसे किया जाता है? जन्म के ऊपर नहीं, हमारे गुणों के ऊपर, हमारे कार्यों के ऊपर, हमारे वृत्तियों के ऊपर। तो ये ब्राह्मण कहने लगे कि ये क्षत्र बंधु हैं राजा उग्रसेन, क्योंकि केवल नाम के लिए क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय का कार्य होता है क्षत्रायते इति क्षत्रिय, सबका प्रजा का संरक्षण करना। और ऐसे राजा के होते हुए किसी भी ब्राह्मण को कैसे कष्ट आ सकता है? नहीं आना चाहिए। यदि आ रहा है तो इसका मतलब है कि यह राजा का दोष है। और ऐसे राजा की सेवा यदि प्रजा करेगी तो प्रजा सदैव दुखी रहेगी, प्रजा को तरह तरह के कष्ट लगातार आते रहेंगे। तो ऐसे भला बुरा कह के वो चले गए। और राजा भी ऐसे हुआ करते थे कि सुन लेते थे ब्राह्मणों से। ब्राह्मण आके कुछ भला बुरा बोल भी देते थे तो सुन लेते थे, समझ लेते थे। तो उनको पता था कि ब्राह्मणों का आदर और सम्मान करना कितना आवश्यक है। कोई भी साधारण ब्राह्मण आके राजा से कुछ भी कह के गया देखिए, और राजा उग्रसेन, कृष्ण, बलराम आदि ने कुछ नहीं कहा। तो फिर वो चले गए। और दूसरे साल, एक साल बीत गया, दोबारा एक दूसरा बच्चा हुआ उनको, और उस बच्चे के साथ भी ऐसे ही हुआ। जैसे ही बच्चे का स्पर्श भूमि से हुआ उस बच्चे का देहांत हो गया। फिर से वही बात, बच्चे को लाके, बच्चे के शव को लाके उग्रसेन महाराज के दरबार में उन्होंने रख के वो चले गए। और फिर भला बुरा कह दिया राजा उग्रसेन को। तीसरी बार ऐसे हुआ और एक साल बाद, और ऐसे लगातार 9 बार उनके उनके उनका बच्चा होता गया। और हर बार वैसे ही हुआ, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ थोड़े ही देर बाद बच्चे का देहांत हो गया। और हर बार वह ब्राह्मण अपने बच्चे को ले जाकर राजा उग्रसेन के दरबार में या द्वार में रख देता, बहुत कुछ भला बुरा कह देता राजा उग्रसेन को और चले आता, क्योंकि वो शोक से ग्रस्त था, बहुत बहुत पीड़ित था शोक से। तो ऐसे जब 9वीं बार हुआ तो उस समय अर्जुन वहां पर सभा में उपस्थित थे। तो अर्जुन ने देखा कि अरे ये आश्चर्य की बात है, ये कैसे हो सकता है? यहां तो स्वयं श्री कृष्ण हैं और बलराम भी हैं और अनिरुद्ध, प्रद्युम्न ऐसे महान योद्धा है, तो इनकी उपस्थिति में ऐसे सब कैसे हो सकता है? राजा उग्रसेन तो कोई पापी राजा नहीं है, वो तो धर्मपरायण राजा है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? फिर भी अर्जुन ने अपनी आवाज उठाई। जैसे वह ब्राह्मण वहां रो रहे थे और चिल्ला रहे थे, और उन्हें क्या यहां पे कोई भी एक नकली क्षत्रिय भी नहीं है जो जाके कम से कम इस ब्राह्मण के घर के सामने जाके धनुष और तीर उठा के खड़ा रहे, कम से कम दिखाने के लिए कि मैं रक्षा करने की कर रहा हूं? इतना भी कोई क्षत्रिय नहीं कर सकते? जो क्षत्रिय ऐसे नहीं करते हैं, अपनी प्रजा की रक्षा जो नहीं करते हैं, वो केवल ऐसे राजा हैं जैसे कि किसी नट में, किसी नाटक में एक कोई राजा की भूमिका निभा रहा है जो कि किसी का भला नहीं कर सकता। जैसे समझ लीजिए हमारे भक्त लोग जैसे जन्माष्टमी आदि में हमारे भक्त लोग कई नाटक आदि प्रस्तुत करते हैं, तो यदि कोई भक्त एक राजा की भूमिका निभा रहा है तो राजा की भूमिका निभाते समय श्रोतागण जो है उनमें से कोई एक जाके उस राजा के पूछे, देखो मेरे समाज मेरी ये तकलीफ है मेरे पूर्ण कर दो, वो कैसे करेगा? वो तो केवल भूमिका निभा रहा है ना, तो सचमुच राजा नहीं है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि ये क्षत्रिय ऐसे ही है, क्या फायदा है? तो फिर अर्जुन ने कहा कि मैं ये वायदा करता हूं, अर्जुन ने बहुत कुछ कह गए और फिर कहने लगे कि मैं आपके आने वाले पुत्र की रक्षा करूंगा, बिल्कुल डरना नहीं। और ऐसे जोश में आके अर्जुन ने कह दिया और फिर सोचा कि यदि मैं सफल नहीं होऊंगा तो क्या होगा? फिर उन्होंने एक ऐसे भयंकर वचन दिया, कहा यदि मैं असफल हुआ आपके बच्चे की रक्षा करने के लिए तो मैं अग्नि में प्रवेश कर दूंगा। ऐसा भयंकर वचन अर्जुन ने किया। तो ब्राह्मण कहने लगे, आप एक बालक के समान एक बात कर रहे हो जिसका कोई संसार में अनुभव नहीं है। यहां पे श्री कृष्ण है, बलराम है, अनिरुद्ध है, प्रद्युम्न है, ऐसे अतिरथी महारथियों ने ये सब कुछ नहीं कर पाए, और अर्जुन जो कह रहे मैं गांडी बाण धारण करके बैठा हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ये कैसे संभव है? जब ये सब नहीं कर पाए हैं तो अर्जुन तुम कैसे कर पाओगे? खैर ठीक है, तुम वचन दे रहे हो, प्रयास करो। फिर अर्जुन द्वारका छोड़ के चले नहीं गए, द्वारका में ही रहे, क्योंकि वचन दिया था ना कि वो ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा करेंगे। तो अगली बार ब्राह्मण को 10वें बार फिर पुत्र हुआ, 9 पुत्रों की तो हत्या मृत्यु हो गई थी, अब 10वीं बार ऐसे पुत्र का जन्म हुआ। और जैसे ही जन्म होने जा रहा था तो उस ब्राह्मण ने अर्जुन को संदेश भेजा कि हे अर्जुन जल्दी चले आओ, अभी अभी जन्म होने वाला है। तो अर्जुन ने शिवजी का स्मरण किया, क्योंकि शिवजी ने अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान किया था। जब ब्राह्मण ऐसे संशय की दृष्टि से देख रहे थे अर्जुन की ओर, जबकि अर्जुन ने वायदा लिया था उनके पुत्र की रक्षा करने के लिए, तो अर्जुन ने उत्तर में यह कहा था कि मेरी शक्ति को कम नहीं समझना, मैंने शिवजी को भी प्रसन्न किया हुआ है और शिवजी से मैंने पाशुपत अस्त्र आदि प्राप्त किया है। महाभारत में ये लीला है, घटना है कि जब वन में थे अर्जुन, तो शिवजी एक शिकारी के वेश में आए और एक ही पशु को दोनों मार रहे थे अपने अपने तीरों से। और जैसे ही उन्होंने एक पशु को मारना चाहा तो दूसरे ने तीर कई उस पशु के मुंह में डाल दिए, तो दोनों के बीच में बड़ा वाद हुआ और फिर दोनों के बीच में युद्ध हुआ, अर्जुन और शिवजी। लेकिन अर्जुन उस समय नहीं जानते थे कि ये शिवजी हैं स्वयं। शिवजी उनकी परीक्षा करना चाहते थे, उनका शौर्य देखना चाहते थे। तो जब ऐसे भयंकर युद्ध दोनों के बीच में हुआ तो शिवजी अर्जुन के शौर्य को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और कहा कि अर्जुन मैं तुम्हारे शूरवीरता से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। तो शिवजी ने अनेक दिव्य अस्त्र प्रदान किए अर्जुन को, उनमें से प्रमुख था पाशुपत अस्त्र, क्योंकि शिवजी का नाम है पशुपति, तो पाशुपत अस्त्र ये प्रदान किया। तो अर्जुन ने उस ब्राह्मण को याद दिलाया कि देखो शिवजी मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे उन्होंने ऐसे ऐसे अस्त्र दिए हैं। तो जब अब वो निकल रहे थे, जब उनको खबर मिली कि पुत्र का जन्म होने वाला है, तो उन्होंने शिवजी का स्मरण किया। तो प्रभुपाद जी कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम ग्रंथ में बताते हैं कि अर्जुन ने कृष्ण का स्मरण क्यों नहीं किया जाने जाते समय, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कृष्ण मेरे मित्र हैं, ये तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले हुई थी ना घटना, तो अभी तक कृष्ण ने भगवद गीता नहीं बोली थी अर्जुन को, और वैसे भी अर्जुन तो केवल श्री कृष्ण को अपना मित्र ही मान रहे थे। यद्यपि बहुत प्रेम था, कृष्ण के शूर वीरता को अच्छी तरह से जानते थे, फिर भी उन्होंने देखा कि 9 बच्चे हुए और 9 की रक्षा भी नहीं, एक की भी रक्षा नहीं कर पाए श्री कृष्ण, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण न करके शिव जी का स्मरण किया, क्योंकि शिव जी ने उन्हें पाशुपत अस्त्र प्रदान किया था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण वहां बड़ी प्रसन्नता से आनंद देख रहे थे, क्योंकि ये सारी जो घटनाएं जो भी हुई वो वास्तव में कृष्ण की योजना से ही हुई थी। कैसे हुई, क्यों हुई, वो धीरे धीरे से हम देखते हैं। तो श्री कृष्ण वहां थे, लेकिन अर्जुन को ये पता नहीं था कि ये भगवान कृष्ण की ही योजना है। तो खैर, अर्जुन आगे चले गए और अपने पाशुपत अस्त्र से उन्होंने वो तीर ले ली, और ब्राह्मण के घर की रक्षा करने के लिए तीरों का एक कवच बना दिया 8 दिशाओं में, ताकि कोई प्रवेश नहीं कर पाए, इस बच्चे के प्राण को बाहर नहीं ले जा पाए। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा रोने लगा जैसे कि होता है, और तुरंत बच्चा गायब हो गया। और बच्चे के गायब होने के साथ साथ जो कवच तीरों का बनाया था अर्जुन ने, वो सारे तीर भी गायब हो गए, और अर्जुन देखते रह गए। अर्जुन को समझ में नहीं आया, अब शिवजी की ताकत भी परास्त हो गई, ये कैसे, ये क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर अर्जुन ने अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया। अर्जुन वैसे बड़े योगी भी थे, तो भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन के पास तरह तरह की योग शक्तियां थीं। ऐसी एक योग शक्ति होती है जिसके द्वारा योगी सारे ब्रह्मांड में भ्रमण कर सकते हैं। जैसे कि नारद मुनि हैं, उनको कोई वीजा पासपोर्ट की जरूरत पड़ती नहीं है, वो जहां चाहे जाते हैं अपने स्वेच्छा के अनुसार, इधर उधर घूमते रहते हैं सारे ब्रह्मांड में, कभी ब्रह्मा जी के यहां तो कभी स्वर्ग लोक में, कभी पाताल में, कभी पृथ्वी लोक में, कभी वैकुंठ में भी जाके चले आते हैं। तो अर्जुन फिर यमलोक गए, उन्होंने थोड़े मंत्रों का उच्चारण किया और सीधे यमलोक गए देखने के लिए कि क्या वो बच्चे वहां तो नहीं है, वहां पे नहीं मिले। फिर वरुण लोक गए, वायु लोक गए जहां वायुदेव निवास करते थे, वरुण देव के घर में गए, और ऐसे जितने भी बड़े बड़े देवता थे उन सब के लोकों में चले गए, यहां तक कि चंद्रदेव के पास गए, पाताल लोक में, रसातल में, समस्त लोकों में गए, और कहीं भी उनको बच्चे मिले नहीं। बड़े हैरान हो गए, निराश हो गए अर्जुन, लेकिन अर्जुन वचनबद्ध थे, तो द्वारका लौटे और कहा कि मैं अब अग्नि में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मैंने ऐसे व्रत लिया था। तो अग्नि में प्रवेश करने ही वाले थे अर्जुन कि उस समय श्री कृष्ण आए। अरे अर्जुन, ये क्या कर रहे हो, ऐसे करना थोड़ी उचित है तुम्हारे लिए। और भगवान कृष्ण के मन में तो ये विचार था, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ही सब कुछ किया था ना, तो यदि अर्जुन ऐसा कर भी देते तो कृष्ण उनको छोड़ते नहीं, क्योंकि अर्जुन के वो प्रिय मित्र हैं, उनके भक्त हैं। और दूसरी बात कि अर्जुन ऐसा करते तो कृष्ण की बदनामी होती, अरे कैसे, क्या देखो तुम्हारे मित्र को ऐसे हुआ, कृष्ण तुमने कुछ कर नहीं पाए। तो आगे चल के हजारों पीढ़ियों बाद भी कृष्ण के बारे में लोग ऐसे कहते, देखो अपने मित्र की मदद नहीं कर पाए, मित्र को बचा नहीं पाए। तो खैर, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, मेरे साथ आओ। तो अर्जुन फिर चले, भगवान श्री कृष्ण ने फिर अपने रथ को बुलवाया, और रथ के 4 घोड़े थे, सफेद हिम की तरह, शैब्य, सुग्रीव, मणिपुष्पक, बहालक, ये चार भगवान श्री कृष्ण के रथ के घोड़े हैं। अब याद रखिए कि भगवान श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी यहाँ पृथ्वी पर जब अवतार उन्होंने लिया था, एक मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे थे। मनुष्य समाज में उनका प्राकट्य हुआ था, इसलिए जैसे साधारण मनुष्य करता है वैसे ही वो कर रहे थे। तो फिर ये रथ आया उनके पास और इसमें सवार हुए कृष्ण और अर्जुन, और ये चल पड़े और ये आकाश पथ से होते हुए सारे ग्रहों को सारे लोगों को पार कर गए और फिर ब्रह्मांड के आवरण तक पहुंचे। अब देखिए, ऐसे भागवत में और अन्य ग्रंथों में बताया हुआ है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, और हर एक ब्रह्मांड को ब्रह्मांड क्यों बुलाया जाता है? ब्रह्म अंड, क्योंकि उनका आकार एक अंडे का है, और जैसे अंडे के आवरण होते, अंडे के अंदर भी कुछ होता है, आशा करते हैं आप नहीं जानते हैं कि क्या होता है। तो अंदर होता है और फिर बाहर आवरण, तो उसी प्रकार से ब्रह्मांड में अंदर खाली जगह होती है, जिस खाली जगह में गर्भोदक शायी विष्णु आके आधा उसे अपने दिव्य पसीने से भर देते हैं, उसमें वो शयन करते हैं गर्भोदक शायी विष्णु के रूप में। उनकी नाभि से कमल पुष्प आता है जिसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। परंतु ब्रह्मांड का आवरण भी होता है, ये आठ आवरण होते हैं, भूमि आप अनल वायु आदि, ऐसे आठ एक के बाद एक और एक के बाद एक, ये दस गुना चौड़ाई में ज्यादा होते हैं और इसमें अंधकार होता है। तो बाहर की रोशनी अंदर नहीं आ सकती, अंदर की रोशनी ब्रह्मांड के बाहर नहीं जा सकती, इसलिए ब्रह्मांड के अंदर अंधकार होता है, इसलिए सूर्य आदि की आवश्यकता पड़ती है। यदि सूर्य न होता यहां तो अंधकार सारे ब्रह्मांड में होता। तो फिर श्री कृष्ण अर्जुन को साथ में अपने रथ में बिठाकर ले गए और ब्रह्मांड के आवरण का छेद करके अंदर से ही जा रहे थे, वहां बिल्कुल अंधकार था। और ये चार घोड़े जो हैं, ये मानो भ्रमित हो गए, उनको पता नहीं चला कि अब कैसे जाना है, सब जगह बिल्कुल अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ रहा था। तो ये घोड़े वास्तव में साधारण घोड़े नहीं, इस दुनिया के घोड़े नहीं थे वो, ये भी वैकुंठ के घोड़े थे। श्री कृष्ण थोड़े कोई साधारण घोड़ों को चलाएंगे, उनके घोड़े भी तो दिव्य हैं। तो लेकिन क्योंकि श्री कृष्ण मनुष्य लीला नर लीला कर रहे थे, तो ये घोड़े भी साधारण संसार के घोड़ों की तरह व्यवहार कर रहे थे। वो तो वैकुंठ के घोड़े हैं, तो वो क्यों डरने वाले हैं अंधकार से? उनको इस भौतिक दुनिया की रोशनी और अंधकार से क्या मतलब है? कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए, वैकुंठ के निवासियों के लिए उनकी दृष्टि तो परम है। लेकिन फिर भी क्योंकि श्री कृष्ण नरलीला कर रहे हैं, तो वो भी बिल्कुल भ्रमित हो गए, वो देख नहीं पा रहे थे अंधकार में कहाँ जाना है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, सुदर्शन, जिसके द्वारा अच्छा दर्शन हो सके। तो सुदर्शन की रोशनी आगे के रास्ते को दिखलाते रही और फिर ये घोड़े चलते गए काफी समय तक। यद्यपि ये मन की गति से चल रहे थे, फिर भी काफी समय लगा आवरण को पार करने के लिए। और आवरण जैसे ही पार किया उन्होंने, फिर अचानक ऐसी एक तेज रोशनी थी वहां, जिसको अर्जुन भी सहन नहीं कर पाए, उनको आंखों को ढक के रखना पड़ा। और ये कौन सी रोशनी थी? ब्रह्म ज्योति। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हरिवंश नाम का एक पुराण है जो महाभारत से संबंधित है। तो इस हरिवंश पुराण में या हरिवंश में ऐसे बताया गया है कि इस घटना के समय फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन देखो, ये जो ब्रह्म ज्योति है, ये मेरा ब्रह्म तेज है, ये मुझसे अभिन्न है, ये मेरे शरीर का तेज है, ये दिव्य तेज है मेरे शरीर का। तो निराकार ब्रह्म की पहचान अर्जुन को करा के दी श्री कृष्ण ने और कहा कि जो योग वित्त होते हैं, जो योग पथ में वेदांत के अध्ययन आदि करके ज्ञान योग अष्टांग योग के अभ्यास में जो परिपूर्ण हो जाते हैं, ऐसे लोगों की मुक्ति इस प्रकार की होती है कि वो यहां आके लीन हो जाते हैं और फिर भी अर्जुन देख नहीं पाए। ये ब्रह्म ज्योति का तेज इतना ज्यादा था। ऐसे कई आध्यात्मिकवादी होते हैं, ज्ञान योगी हो अष्टांग योगी हो, जो इस निराकार ब्रह्म की उपासना करना पसंद करते हैं, इस रोशनी से आकर्षित होते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण के भक्त, इनको ऐसी कोई रुचि नहीं है निराकार ब्रह्म से। निराकार ब्रह्म बल्कि आंखों में अंधकार पैदा कर देता है और भगवान का रूप नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए ईशोपनिषद में भक्त प्रार्थना करते हैं, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यत्तत्पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, कि हे प्रभु, ये जो आपके निराकार तेज है इसको कृपया मुझसे ढक दीजिए, क्योंकि जब तक मैं ये तेज को देख रहा हूं आपके सुंदर मुखारविंद का दर्शन मैं नहीं कर पा रहा हूं। दूसरे शब्दों में भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप से मतलब है, ये निराकार ब्रह्म तेज से कोई मतलब नहीं है। यद्यपि ये भगवान का ही एक रूप है, भगवान के शरीर का तेज है, स्वयं भगवान ने ऐसे अर्जुन को बतलाया। तो फिर ऐसे आगे चलते चलते फिर अंततः वो कारण सागर में पहुंचे। कारण सागर को विरजा नदी भी कहते हैं। विरजा इसलिए कहते हैं कि उस स्थान में जो संसार के अंदर तीन गुणों का प्रभाव होता है वो नहीं है। रज, रज अर्थात रजगुण, रजगुण मतलब तीनों गुण, और वी रज विगत रज, तो जहां पे तीन गुणों का प्रभाव नहीं है अर्थात जो आध्यात्मिक स्थान है, ऐसे समुद्र में वो पहुंच गए। विरजा नदी या कारण सागर, कभी नदी कहते हैं कभी सागर कहते हैं, है तो ये बहुत विशाल, इतना विशाल है कि हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और विरजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि साथ साथ ये आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बिल्कुल बीच में है, और यहां आके उन्होंने देखा बहुत ऊंचे ऊंचे लहरें हैं, तेज पवन बह रहा है जिसके कारण से लहरें ऊंची ऊंची बह रही थी, और फिर दूर उन्होंने देखा कि बहुत विशाल महल है, रत्नों का बना हुआ, तरह तरह के मूल्यवान पत्थरों का बना हुआ। और फिर वहां अंदर प्रवेश किया उन्होंने और देखा कि अनंत शेष वहां है, उनके हजारों फणों सहित, और उनकी जो गर्दन है वो कैलाश पर्वत के समान सफेद लग रहा था। कैलाश पर्वत में हमेशा हिम रहता है, बर्फ रहता है, सफेद सफेद, और ऐसे अनंत अनंत शेष वहां झूमते हुए विश्राम कर रहे थे और उनके ऊपर महाविष्णु शयन कर रहे थे। आप जानते हैं कि महाविष्णु ही भौतिक सृष्टि के उद्गम होते हैं। जब वो सांस बाहर लेते हैं तो उनके त्वचा के रोम छिद्रों से ये ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं, और जब महाविष्णु अंदर सांस लेते हैं तो ये सारे ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं, ऐसे श्रीमद् भागवत में वर्णन है। तो सृष्टि की रचना ऐसे होती है, और फिर हर एक ब्रह्मांड के अंदर महाविष्णु गर्भोदकशाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। तो महाविष्णु वहां बड़े आराम से शयन कर रहे थे, उनकी आठ भुजाएं थीं, वो बहुत अच्छे ढंग से अलंकृत थे, तरह तरह के आभूषणों से सुशोभित थे, उनकी जितने भी शक्तियां हैं वो उनके पास में खड़े होकर मूर्तिमान रूप में उनकी सेवा कर रहे थे। और प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि भगवान वो है जिनकी अनंत शक्तियां हैं, अपार शक्ति उनकी है, और ये सारी शक्तियां भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहती हैं, और भगवान स्वेच्छा से इन शक्तियों को प्रदान करते हैं किसी योग्य जीवों में इन भौतिक ब्रह्मांडों के भीतर। जैसे हर एक ब्रह्मांड में देवी देवता होते हैं, तो उनके जो कार्य करने के लिए जो शक्ति है, वो भी बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं, सुकृतन है ये देवी देवता, उनको ये विशेष शक्ति भगवान कृष्ण ही प्रदान करते हैं। तो ये समस्त शक्तियां महाविष्णु की सेवा करते करते वहां पर उपस्थित थे। तो जैसे ही श्री कृष्ण और अर्जुन उस रथ पे सवार होकर आए, तो महाविष्णु ने उनको देखा, बहुत प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण और अर्जुन ने दोनों अपने हाथ जोड़ दिए, बद्धांजलि मुद्रा में प्रणाम किया महाविष्णु को। श्री कृष्ण ने भी महाविष्णु को प्रणाम किया। अब यह प्रश्न आता है कि यदि श्री कृष्ण समस्त विष्णु और नारायण और अन्य अवतारों के उद्गम हैं, श्री कृष्ण से ही सारे अवतार उत्पन्न होते हैं, विष्णु जी के जितने भी रूप हैं वो भी श्री कृष्ण से ही आते हैं, तो फिर श्री कृष्ण ने महाविष्णु को नमस्कार क्यों किया? महाविष्णु को श्री कृष्ण को नमस्कार करना चाहिए था। तो आचार्यों ने बताया है कि जब वृंदावन में श्री कृष्ण गोवर्धन लीला कर रहे थे और अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा था, गोवर्धन की पूजा हो रही थी, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी गोवर्धन को नमस्कार किया था, प्रणाम किया था झुक के। गोवर्धन भी श्री कृष्ण ही हैं, श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। तो ये एक लीला है, क्योंकि श्री कृष्ण एक साधारण 7 साल के ग्वाल बाल की भूमिका निभा रहे थे। नर लीला करते समय भगवान श्री कृष्ण एक साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं। द्वारका में भी तो भगवान श्री कृष्ण नरलीला कर रहे थे। तो जब वो महाविष्णु के सामने आए, तो फिर उन्होंने अपने हाथ बद्धांजलि मुद्रा में रखे, अर्जुन ने भी नमस्कार किया महाविष्णु को, और महाविष्णु कहने लगे बड़े गंभीर आवाज में कि आप दोनों का स्वागत है, मैं आपकी राह देख रहा था काफी समय से, आप दोनों का दर्शन करने की तीव्र इच्छा मेरी थी, इसलिए मैंने उस ब्राह्मण के 10 बच्चों को चुरा लिया, और अब आप आए, मैंने आपका दर्शन किया, मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। वैसे आप ही नर नारायण ऋषि हैं, अब जैसे ही आपकी लीला पृथ्वी पर समाप्त हो जाएगी तो मेरे पास शीघ्र ही लौट के आ जाइए, क्योंकि इस भौतिक सृष्टि में भगवान विष्णु के द्वारा ही सारे अवतार प्रकट होते हैं। तो इसलिए महाविष्णु कह रहे थे कि शीघ्र ही आपकी लीला समाप्त करके लौट के आइए मेरे पास, और ये लीजिए ये सारे बच्चे हैं। और बच्चों का जैसे उनकी जैसे आयु थी जब उनकी मृत्यु हुई थी, उसी आयु के वो बच्चे थे, ऐसे भागवत में वर्णन है। तो अर्जुन और श्री कृष्ण ने फिर उन बच्चों को लिया, अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन अर्जुन ने जब महाविष्णु का रूप देखा और महाविष्णु लोक का भी दर्शन किया, और इसके पहले तो वो आए थे विरजा नदी में, उसके पहले ब्रह्म ज्योति में, उसके पहले ब्रह्मांड के आवरण आदि में, तो अर्जुन को बड़ा बड़ा आश्चर्य हुआ था। ऐसा पर्यटन की और कोई नहीं कर सकता है। हम तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ किसी दूसरे देश में जा सकते हैं पर्यटक के रूप में, लेकिन अर्जुन को भगवान कृष्ण की कृपा से सारे ब्रह्मांड में घूमने का अवसर मिला। ब्रह्मांड के आवरण को पार करके विरजा नदी में जाके महाविष्णु लोक तक वो पहुंच गए, और फिर वो मन ही मन सोच रहे थे कि ये तो श्री कृष्ण की कृपा से हुआ कि मुझे महाविष्णु का दर्शन मिला। उस समय भगवान की योग माया शक्ति के कारण अर्जुन ये नहीं जानते थे कि महाविष्णु भी श्री कृष्ण के ही अंश हैं, उनके कला हैं, उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। परंतु क्योंकि श्री कृष्ण एक मनुष्य लीला कर रहे थे इसलिए इस बात को उन्होंने दिखलाया नहीं। बाह्य व्यवहार उनका अर्जुन के तरह ही था महाविष्णु के सामने। और प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि जब मुक्ति का समय आता है भक्तों के लिए तो मुक्ति का एक पथ होता है भगवान के धाम जाने के लिए। वो पथ सबसे पहले तो ऊपर ऊपरी लोकों के पास से जाकर ब्रह्मांड के भेद करके जैसे अर्जुन गए थे वैसे ही महाविष्णु लोक को पार करके और भी आगे जाते हैं। वैकुंठ लोकों में अर्जुन नहीं गए इस समय, केवल महाविष्णु लोक तक जाके लौट के आए। लेकिन जिनकी मुक्ति होती है जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो महाविष्णु लोक के आगे भी फिर वैकुंठ लोकों में प्रवेश करते हैं। और जो वृंदावन श्री कृष्ण के भक्त होते हैं वो वैकुंठ लोकों को भी पार करके गोलोक वृंदावन पहुंच जाते हैं और श्री कृष्ण का नित्य सानिध्य उन्हें प्राप्त होता है। तो खैर अर्जुन इन 10 बच्चों को वापस ले आए और ब्राह्मण को दे दिया तो ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। और आते आते फिर अर्जुन सोचने लगे ये सब हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह हुआ। अभी अर्जुन का सोच विचार चलने लगा। पहली बात तो ये है कि यदि महाविष्णु श्री कृष्ण के अंश हैं और उन्होंने कहा कि मैं आपका दर्शन अर्थात श्री कृष्ण का दर्शन करना चाह रहा था, तो महाविष्णु ने ये सारी लीला बच्चों के मृत्यु की, उनको अपहरण करके ले जाने की इसलिए की क्योंकि महाविष्णु श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि ये तो महाविष्णु हैं, इनके शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और जैसे एक आंवला हमारी हथेली में रहे, आंवला फल छोटा सा, तो कैसे हम उसे अच्छी तरह से देख सकते हैं, जान सकते हैं, वैसे महाविष्णु सारे सृष्टि को जानते हैं। तो फिर वो द्वारका उनको देखने क्यों नहीं आए, कि इस तरह की लीला उन्होंने क्यों की। फिर अर्जुन सोचने लगे क्या इसका कारण ये हो सकता है कि श्री कृष्ण के अनुमति के बिना द्वारका में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, यहां तक कि महाविष्णु भी नहीं कर सकते, क्या ऐसे हो सकता है। हां वैसे हो भी ठीक है, मान लीजिए कि महाविष्णु प्रवेश भी कर गए फिर भी वो स्वयं क्यों गए, वो अपने किसी दूत आदि को क्यों नहीं भेजा। उन्होंने दूत को भेज देते थे, स्वयं आने की क्या आवश्यकता थी उनको। तो फिर उनके मन में विचार आया क्या इसका कारण ये हो सकता है कि ये काम ऐसा था कि कोई दूत भी नहीं कर सकता था, स्वयं महाविष्णु को आके ही करना था। क्योंकि श्री कृष्ण के भूमि में द्वारका में कौन आके ऐसे ब्राह्मण के पुत्रों को उठा के ले जा सकता है, महाविष्णु का दूत भी नहीं कर सकता है, स्वयं महाविष्णु को करना होगा। लेकिन फिर आगे अर्जुन सोचने लगे ठीक है, यदि हमने मान भी लिया कि महाविष्णु स्वयं आए और उन्होंने बच्चों को ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु है वो ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं, ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, तो उन्होंने एक ब्राह्मण को इतना कष्ट क्यों दिया, वो भी 10 साल तक एक के बाद एक जो बच्चे हुए उनकी मृत्यु होती रही। तो क्या इसका कारण ये हो सकता है कि जब तक ऐसे कोई ब्राह्मण को कठिनाई न हो तब तक श्री कृष्ण उनके पास आते नहीं, यही एक चीज थी जिसके कारण श्री कृष्ण महाविष्णु के पास चले आते। और फिर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हरिवंश में नाम के ग्रंथ में बताया गया है कि अर्जुन यही प्रश्न श्री कृष्ण से करते हैं और श्री कृष्ण उत्तर देते हैं हाँ ये सही है, ये महाविष्णु का विचार था कि जब तक मैं ब्राह्मण के साथ ऐसे कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि श्री कृष्ण ब्राह्मणों से इतना प्रेम करते हैं, तब तक श्री कृष्ण मेरे पास नहीं आएंगे, मैं उनका दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो महाविष्णु भी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। और फिर आगे श्री कृष्ण ने एक और बात कही, देखो अर्जुन, केवल मैंने ब्राह्मण के लिए ये कार्य नहीं किया, मैं तुम्हें महाविष्णु लोक लेकर गया केवल इसलिए नहीं कि ब्राह्मण के बच्चों के मृत्यु के कारण उन बच्चों को वापस लाना चाहता था, ऐसे नहीं। यदि ऐसा होता तो ब्राह्मण के पहले बच्चे के मृत्यु के बाद ही मैं चला गया होता, लेकिन क्योंकि तुम अग्नि में प्रवेश करने वाले थे और तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुम्हारी रक्षा के लिए मैं वहां आया, तुम्हारे साथ मैं तुम्हें ले गया। दूसरे शब्दों में भगवान के भक्त जो होते हैं वो सबसे अधिक प्रिय होते हैं भगवान के लिए। भले अन्य कोई ब्राह्मण हो, पर यदि वो ब्राह्मण शुद्ध भक्त न हो तो हमें जानना चाहिए कि भगवान शुद्ध भक्तों से अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्तों का प्रेम वैसा ही है भगवान के प्रति। तो इस कथा से हम जान सकते हैं कि स्वयं महाविष्णु, जिनसे सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, वो भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। वैसे आपने वो कथा सुनी होगी कि ब्रह्मा जी एक बार द्वारका में आए थे श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए, परंतु ये तो एक ब्रह्मा जी हैं, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांडों के उद्गम है महाविष्णु, और ये महाविष्णु स्वयं श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण का स्थान क्या है, हम थोड़ी बहुत कल्पना कर सकते हैं। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी फिर वर्णन करते हैं श्री कृष्ण के महानता का, उनके ऐश्वर्य का। तो ये और एक प्रमाण है, और एक सबूत है, जिससे हम जान सकते हैं कि श्री कृष्ण वास्तव में समस्त विष्णु नारायण तत्वों के जितने भी अवतार हैं उन सब के उद्गम हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने घोषणा की है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्वकारण कारणम्, कि समस्त कारणों के कारण श्री कृष्ण हैं, उनसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है, यहां तक कि जितने भी अवतार आदि हैं वो भी श्री कृष्ण से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमारे प्रेम, उपासना, आराधना, सेवा के पात्र श्री कृष्ण ही हैं। तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि जिस श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए महाविष्णु जैसे अवतार को ऐसे सब करना पड़ा, वो हमारे लिए प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान यहाँ उपस्थित हैं, दर्शन दे रहे हैं हमें, वो पधारे हैं बेलगाम हमको दर्शन देने के लिए। हमें महाविष्णु लोक नहीं जाना पड़ रहा है उनका दर्शन करने के लिए, वो यहां पे आए हैं, तो कितना सौभाग्य है हमारा। तो पूरा पूरा लाभ हमें उठाना चाहिए, जितना हो सके हम यहां पर आ सकते हैं, यहां भक्तों के बीच में रह के कथा आदि कर सुन सकते हैं, कीर्तन में भाग ले सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं, तरह तरह की सेवाएं यहां हैं वो भी हम कर सकते हैं, भगवान के सुंदर रूप का दर्शन कर सकते हैं, और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के पथ में हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि भगवान श्री श्री राधा गोकुलानंद के चरणों के प्रति हमारे हृदय में शुद्ध प्रेम जागृत हो, बस यही हमारे जीवन का उद्देश्य है और कुछ नहीं, ये हमारे जीवन की सफलता होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आपके कोई प्रश्न है? माइक चला दीजिए, और आपस में जब आप माइक देंगे तो ऑफ मत कीजिए, उसको चालू ही रहने दीजिए जब आप देंगे माइक पीछे वहां। हरे कृष्ण।
भक्ति में हम देखते हैं भक्ति की भगवान को पसंद करना है, तो भक्ति करना है, भक्ति करने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए। तो अर्जुन की बात अभी चल रही थी, तो शिव जी का नाम लिया, तो और फिर भी उन्होंने, भगवान कृष्ण ने उनको भगवद गीता सुनाई। तो हम तो कभी शिव जी का तो नाम नहीं लेते, प्रार्थना भी नहीं करते, तो कम से कम हमको भगवद गीता नहीं तो भगवद गीता के 100 श्लोक, भागवत के 100 श्लोक दिमाग में जाए। भगवान ऐसे क्यों नहीं करते?
भगवान तो करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी भी तैयारी होनी चाहिए। हम यदि प्रयास करेंगे तो भगवान में बुद्धि, शक्ति, बल सब प्रदान करेंगे। भगवान ये भी चाहते हैं कि हम भी कुछ प्रयास करें। जब हम प्रयास करेंगे तो भगवान की कृपा भी आएगी, और सारी चीजें जो हमारे भक्ति के लिए आवश्यक हैं भगवान उन्हें प्रदान करेंगे। भगवान की श्री मूर्ति को पूर्व अथवा पश्चिम की ओर मुख रख करके रखने के पीछे क्या शास्त्र कारण है, विधि है? कोई ऐसे दिशाएं होती हैं जो शुभ माने जाते हैं, जैसे शिल्प शास्त्र आदि हैं, तो इनमें बताया गया कि क्या उचित है क्या नहीं है। हर चीज के लिए नियम होते हैं। वैदिक सभ्यता में बहुत विस्तार में नियमों का वर्णन है। सूक्ष्म ये सब एक विज्ञान है, इसके अनुसार ये सब किया जाता है। आज नया साल का पहला दिन है। हाँ, हम भूल ही गए, लेकिन वैसे जैसे हम कल रात को भी बता रहे थे, हमारे लिए हर दिन नया दिन है, क्योंकि कृष्ण की भक्ति के लिए हर दिन नया दिन, नित्य नव नवायमान। कृष्ण ताजे हैं, उनकी सेवा ताजी है, और उनके भक्त भी ताजे हैं। जब प्रवचन के समय सो भी जाते हैं तब भी ताजे के ताजे ही लगते हैं। आज नया साल का पहला दिन है, तो आप यहां उपस्थित सभी वैष्णवों की आशीर्वाद दीजिए, और इसे एक दिन कि एक दिन भगवान का दर्शन हो जाए हमें सुबह। ऐसा रोज हो रहा है, आप मंदिर में आइए तो होगा तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। बस अब आइए रोज, जी भर के दर्शन कर लीजिए भगवान। इसलिए तो भगवान खड़े हैं यहां दर्शन देने के लिए। हमें यह नहीं सोचना है कि ये भगवान वो भगवान से अलग है। प्रतिमा न है तुम्हें साक्षात व्रजेंद्र नंदना, ये प्रतिमा नहीं है, भगवान की अर्चा विग्रह साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। क्या महाविष्णु द्वारका में भगवान के महल में जाकर दर्शन लेने के लिए समर्थ नहीं थे? कृपया समझाइए। अवश्य समर्थ है, लेकिन यदि थे तो भगवान श्री कृष्ण का गुणगान होता कैसे? कि महाविष्णु भी ऐसी लीला करते हैं श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने के लिए। महाविष्णु को ये सब करना पड़ता है श्री कृष्ण को देखने के लिए। इससे हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण का दर्शन कितना दुर्लभ है और देखने वाला कितना भाग्यशाली है। और कोई प्रश्न? क्या निर्गुण ब्रह्मज्योति का स्थान विरजा नदी के इस ओर है? इस ओर नहीं। वैसे जब ये ब्रह्मांड को हम पार करते हैं तो तुरंत विरजा नदी या तुरंत ये ब्रह्म ज्योति शुरू होती है, और ब्रह्म ज्योति में ही ये विरजा नदी है, और फिर आगे और चलेंगे तो उसी ब्रह्म ज्योति में अनंत कोटि वैकुंठ लोक भी होते हैं। प्रश्न ये है कि जब महाराज रैवत ये भागवत की कथा है। ब्रह्मलोक में गए थे तो यहाँ पृथ्वी लोक में अनेक युग बीत चुके थे, तो जब अर्जुन और श्री कृष्ण महाविष्णु लोक गए तो यहाँ तो कितने सारे युग बीत चुके होंगे। नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण काल के स्वामी हैं, तो उनकी कृपा से एक रात ये ब्रह्मा जी के जितने चतुर्युग हुए, ब्रह्मा जी की एक रात को वो पृथ्वीलोक के एक रात में उन्होंने रासलीला में लगा दी थी। तो भगवान श्री कृष्ण जब उपस्थित होते हैं तो काल का प्रभाव नहीं होता। हम शास्त्र में अनेक शुद्ध भक्तों की बातें सुनते हैं, क्या इनकी शक्ति पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण है? कर्म नहीं, भक्ति। भक्ति कोई साधारण कर्म नहीं है। तो ये बात तो सही है कि इस जीवन में कोई भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकता जब तक के पिछले जन्म में उसने भक्ति न की हो। तो इसलिए आज यहाँ इस मंदिर में जो भी लोग बैठे हैं, हम सब ने पिछले जन्म में थोड़ी न थोड़ी तो भक्ति अवश्य की थी, कम मात्रा में हो, अधिक मात्रा में हो, जो भी हो। यदि ये न होता तो आज हम यहाँ नहीं बैठे हुए होते। तो पिछले जन्म में हमने जहाँ भक्ति छोड़ी हुई थी वहाँ से आगे बढ़ने का मौका हमें अब मिल रहा है, इसका पूरा लाभ हमें उठाना चाहिए। हरे कृष्णा। आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के पथ में हम सब का पूरा प्रयास रहेगा आगे प्रगति करने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण ऐसे आशीर्वाद हम सब पे करें इस नवे वर्ष में कि हम पूरे हृदय से प्रेम से उनकी सेवा करें और भक्तों के बीच में भी अच्छी तरह से रह के और खूब प्रचार करें और अनेक लोगों को कृष्ण भक्ति में ले आए। हरे कृष्णा। तो एक छोटी सी सूचना है, जैसा कि आप जानते हैं यह मंदिर के कार्य अनेक होते हैं और मंदिर के व्यवस्थापन के लिए भी कई भक्त सेवा करते हैं, इसलिए तो मंदिर चलता है। अब प्रसाद भी कई भक्त बना रहे हैं, हर रविवार को बनाते हैं, हर उत्सव में बनाते हैं, अलग अलग दल होते हैं भक्तों के जो आके अलग अलग सेवाएं करते हैं। तो मंदिर की एक कार्यकारिणी समिति भी है, वर्किंग कमेटी, उसमें चार भक्त थे पहले, अब और एक भक्त उनमें जोड़े जा रहे हैं, तो उनको हम स्वागत करना चाहते हैं ताकि आप सब भी जान लें। संकर्षण प्रभु है यहाँ पे, संकर्षण प्रभु, संकर्षण प्रभु भी अभी पांचवे सदस्य हैं, पीछे खड़े हैं वहां पे, हमेशा पीछे रहना पसंद करते हैं, सेवा करते हैं पीछे खड़े रह के। तो हम प्रार्थना करते हैं श्री श्री राधा गोकुल आनंद से कि वो संकर्षण प्रभु और अन्य जो भक्त हैं समिति में उनको उनके ऊपर ऐसी आशीर्वाद करें कि वो और अच्छी तरह से सेवा कर सकें। साथ साथ और भी जितने भी भक्त हैं जो तरह तरह की सेवाएं करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनको भी ऐसी शक्ति उत्साह इत्यादि प्रदान करें ताकि वो भी और भी अच्छी अच्छी सेवा कर पाए। और आप सबसे भी निवेदन है कि ये कार्यकारिणी समिति भी अपनी अपना पूरा प्रयास लगा रही है मंदिर के व्यवस्थापन को ठीक ठाक और अच्छी तरह से आगे बढ़ाने के लिए, कृपया आपका पूरा योगदान उन्हें आप प्रदान कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।